एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हटके किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने अमेरिकी इतिहास को देखने का जो पारंपरिक तरीका है ना, उसे काफी हद तक बदल दिया।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हॉवर्ड ज़िन की किताब ए पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये किताब सिर्फ अमेरिका के इतिहास के बारे में नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है, मतलब किसकी कहानी हम सुनते हैं और किसकी नहीं।
हाँ, सही कहा। और ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़े नामों जैसे राष्ट्रपति, जनरल या उद्योगपति, इनकी कहानी नहीं है।
जी, ज़िन हमें उन आवाज़ों को सुनने के लिए कहते हैं जिन्हें अक्सर हाशिए पर डाल दिया जाता है, जैसे मजदूर हो गए, गुलाम, मूल निवासी, महिलाएं।
आवासी मतलब आम लोग।
हाँ, आम लोग। किताब का मकसद ही यही है कि इतिहास को ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर देखा जाए, उन लोगों के नज़रिए से जिन्होंने असल में इतिहास को जिया, उसे बनाया, पर किताबों में उन्हें जगह कम मिली।
तो ये एक तरह का वैकल्पिक इतिहास है ना?
बिल्कुल। चलिए पहले इस अनोखे इतिहासकार हॉवर्ड ज़िन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कोई किताबी विद्वान नहीं थे।
हाँ, ये जानना जरूरी है। हॉवर्ड ज़िन 1922-2010, उनकी अपनी जिंदगी के अनुभव उनके लेखन में साफ झलकते हैं।
जी, वो न्यूयॉर्क में यहूदी अप्रवासी माता पिता के घर पले बड़े, मतलब मजदूर वर्ग के माहौल में। फिर दूसरे विश्व युद्ध में वो अमेरिकी वायुसेना में बम वर्षक थे।
अच्छा, ये बात तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी।
हाँ, लेकिन युद्ध का अनुभव उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने फ्रांस में आम नागरिकों पर बमबारी में हिस्सा लिया और वो देखकर, मतलब उस विनाश को देखकर, वो युद्ध के कट्टर विरोधी बन गए हमेशा के लिए।
तो ये अनुभव उनके नजरिए को एक दिशा देता है। फिर उन्होंने पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी की, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी।
हाँ, लेकिन उनका असली कनेक्शन जमीनी आंदोलनों से था, सबसे खास तौर पर नागरिक आंदोलन से। जब वो अटलांटा के स्पेलमैन कॉलेज में पढ़ा रहे थे, जो कि ऐतिहासिक रूप से अश्वेत महिलाओं का कॉलेज है, तब वो सीधे विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए।
मतलब उन्होंने सिर्फ इतिहास पढ़ा या पढ़ाया नहीं, बल्कि वो इतिहास बनते हुए देख रहे थे और उसमें हिस्सा भी ले रहे थे।
बिल्कुल, और यही चीज उनके लेखन को इतनी ताकत देती है। ज़िन ये दावा नहीं करते कि वो कोई निष्पक्ष या तटस्थ इतिहासकार हैं। वो साफ कहते हैं कि मैं शक्तिहीनों के साथ हूँ, उत्पीड़ितों के पक्ष में हूँ।
तो उनके लिए इतिहास लिखना सिर्फ अतीत का लेखा जोखा नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वर्तमान में सामाजिक न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक जरिया है।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब पर, ए पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये काफी मोटी किताब है और अमेरिकी इतिहास का एक लंबा दौर कवर करती है, कोलंबस से लेकर करीब 21वीं सदी की शुरुआत तक।
हाँ, और ये एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। इसका जो मुख्य निशाना है वो है अमेरिकी अपवादवाद का विचार,
अमेरिकी एक्सेप्शनलिज्म। मतलब ये सोच के अमेरिका बाकी दुनिया से कुछ खास है, ज्यादा नैतिक है, लोकतंत्र का एक मॉडल है।
जी वही, ज़िन इस विचार को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका कहना है कि जो इतिहास हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, वो अक्सर विजेताओं की कहानी होती है, शासकों की, अमीर लोगों की,
और उसमें संघर्ष, असहमतियां, ये सब दबा दी जाती हैं।
हाँ, और प्रगति की एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जैसे सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। ज़िन पूछते हैं, अगर हम इतिहास को उन लोगों की नज़र से देखें जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई, तो क्या दिखेगा?
तो वो हमें इतिहास की वो परतें दिखाते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नहीं देखते, जैसे कोलंबस की खोज,
मारे की क्रांति जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं।
हाँ, उसे ज़िन कैसे देखते हैं?
ज़िन उसे अमीर उपनिवेशवादियों की एक चाल के रूप में भी देखते हैं, कि उन्होंने आम लोगों के गुस्से को अंग्रेजों की तरफ मोड़ दिया ताकि उनकी अपनी सत्ता और संपत्ति बची रहे। गुलामी और वर्गीय समानता तो बनी ही रही।
और अमेरिकी संविधान के बारे में, उसे तो लोकतंत्र की बुनियाद माना जाता है।
ज़िन उसे भी आलोचनात्मक नजर से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, और उस समय संपत्ति में इंसान भी शामिल थे, यानी गुलाम।
अच्छा, और आपने शेज़ विद्रोह का जिक्र किया था।
हाँ, शेज़ रिबेलियन, ये किसानों का विद्रोह था कर्ज और टैक्स के खिलाफ। ज़िन दिखाते हैं कि कैसे संविधान बनाने वालों के मन में इस तरह के विद्रोहों को दबाने का डर भी था। ये दिखाता है कि शुरू से ही अमेरिका में अमीर और गरीब के बीच तनाव था।
तो ये जो संघर्ष है अमीर और गरीब के बीच, शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच, यही किताब का केंद्रीय विषय है।
बिल्कुल, जिनके लिए अमरीकी इतिहास अलग अलग घटनाओं का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाला वर्ग संघर्ष है। वो इस विचार को चुनौती देते हैं कि कोई एक राष्ट्रीय हित होता है, अक्सर अलग अलग वर्गों के हित टकराते हैं।
चलिए कुछ और उदाहरणों से समझते हैं, जैसे अमेरिका का पश्चिम की ओर विस्तार, जिसे अक्सर प्रगति या मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा जाता है।
हाँ, उसे जिन मूल अमेरिकी राष्ट्रों की जमीनों पर हिंसक कब्जा और जातीय सफाई कहते हैं, वो ट्रेल ऑफ टीयर्स ऐसी घटनाओं को सिर्फ दुखद आशा नहीं मानते,
आंसुओं का रास्ता, जहाँ चिरोकी और दूसरे समुदायों को जबरदस्ती उनकी जमीनों से निकाला गया था।
जी, जिन कहते हैं जानबूझकर की गई सरकारी नीति थी, क्रूरता थी।
और महिलाओं की स्थिति, क्या किताब उस पर भी बात करती है?
हाँ बिल्कुल, जिन दिखाते हैं कि कैसे आजादी और बराबरी के बड़े बड़े वादों के बावजूद महिलाओं को लंबे समय तक वोट देने के अधिकार से और दूसरे नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया।
वो उन महिलाओं के संघर्षों को भी सामने लाते हैं जिन्होंने इन सीमाओं को तोड़ा।
अच्छा, अब गुलामी और गृह युद्ध पर आते हैं। यहाँ जिन का नजरिया पारंपरिक इतिहास से कैसे अलग है?
पारंपरिक इतिहास अक्सर अब्राहम लिंकन और उत्तर की सेना को मुक्तिदाता के रूप में दिखाता है। जिन इस पर सवाल उठाते हैं, वो गुलामों के अपने प्रतिरोध पर बहुत जोर देते हैं।
मतलब जैसे नेट टर्नर का विद्रोह?
हाँ, नेट टर्नर जैसे बड़े विद्रोह या फिर रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रतिरोध। जिनका मानना है कि गुलाम सिर्फ पीड़ित नहीं थे, वो अपनी आजादी के लिए सक्रिय रूप से लड़ रहे थे।
और गृहयुद्ध के कारणों के बारे में, क्या वो सिर्फ गुलामी खत्म करने के लिए लड़ा गया था? जिन तर्क देते हैं कि उत्तरी सरकार के लिए संघ को बचाए रखना और अपने आर्थिक हित साधना ज्यादा अहम था। गुलामी खत्म करने की घोषणा यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वो एक रणनीतिक कदम ज्यादा था, सिर्फ नैतिक नहीं।
और युद्ध के बाद क्या हुआ? पुनर्निर्माण का दौर, जिसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं।
जिन दिखाते हैं कि वो दौर कैसे असफल हुआ। अफ्रीकी अमेरिकियों को जो अधिकार मिले थे वो जल्दी ही छीन लिए गए और उन्हें फिर से श्वेत वर्चस्व और जिमक्रो कानूनों के तहत दबा दिया गया। मतलब नस्लीय अलगाव और भेदभाव की एक पूरी व्यवस्था बना दी गई।
इसके बाद आता है औद्योगिक युग। अमेरिका में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, रेल लाइनें बिछी।
हाँ, जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ। लेकिन जिन उसे भयंकर वर्ग संघर्ष के दौर के रूप में देखते हैं। ये वो समय था जब बड़े मजदूर आंदोलन हुए,
जैसे 1877 की रेल हड़ताल या हे मार्केट मामला।
बिल्कुल, मजदूर बेहतर मजदूरी, काम के घंटे कम करने और यूनियन बनाने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। लेकिन सरकार और उद्योगपतियों ने मिलकर इन आंदोलनों को बहुत बेरहमी से कुचला। पुलिस, सेना, यहाँ तक कि प्राइवेट गार्ड्स का इस्तेमाल किया गया।
तो जिन ये दिखाते हैं कि कैसे सरकार अक्सर अमीरों का साथ देती है।
हाँ, और वो ये भी जोड़ते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद और विदेश नीति का इस्तेमाल अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए किया गया, जैसे स्पेन के साथ युद्ध हुआ, फिलीपींस पर कब्जा किया गया।
ये सिर्फ अमेरिकी साम्राज्यवाद का फैलाव नहीं था।
जिनके मुताबिक ये देश के अंदर बढ़ते वर्ग संघर्ष और असंतोष को कम करने का एक तरीका भी था, लोगों का ध्यान बाहर की तरफ मोड़ने का।
अच्छा, और 20वीं सदी में भी क्या यही पैटर्न दिखता है?
हाँ, जिन दिखाते हैं कि ये जारी रहा। जैसे पहले विश्व युद्ध के दौरान जो लोग युद्ध का विरोध कर रहे थे, या समाजवादी थे या मजदूर नेता थे, जैसे यूजीन डेब्स।
यूजीन डेब्स जो कई बार राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे।
हाँ, उन्हें और IW जैसे रेडिकल मजदूर संघों के सदस्यों को जासूसी और राजद्रोह जैसे कानूनों के तहत जेल में डाल दिया गया। जिन कहते हैं ये अमीरों का युद्ध था जिसे गरीबों ने लड़ा।
फिर आई महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन।
उस दौरान जबरदस्त जनांदोलन हुए, हड़तालें, बेरोजगारों के मार्च। जिन कहते हैं कि इसी दबाव के कारण राष्ट्रपति रूजवेल्ट को न्यू डील जैसे सुधार लाने पड़े, लेकिन वो इन्हें भी व्यवस्था को बचाने की एक कोशिश मानते हैं, कोई बुनियादी बदलाव नहीं।
और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जिन उसकी भी आलोचना करते हैं।
हाँ, कुछ पहलुओं की, जैसे जापानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को बिना किसी अपराध के कैंपों में बंद करना, या फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की नैतिकता, वो इन सब पर सवाल उठाते हैं।
और शीत युद्ध का दौर।
शीत युद्ध के दौरान कम्युनिज्म का डर दिखाकर जिन के मुताबिक देश के अंदर हर तरह के विरोध को दबाने की कोशिश की गई। नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं पर भी कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया गया।
लेकिन जिन की कहानी सिर्फ दमन की नहीं है, आपने कहा था ये प्रतिरोध की भी कहानी है।
बिल्कुल, और 1907 और 70 का दशक इस प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा अध्याय है। नागरिक अधिकार आंदोलन,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मालकम एक्स।
हाँ, फिर वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन जिसमें लाखों युवा शामिल हुए। नारीवादी आंदोलन जिसने समाज में महिलाओं की भूमिका पर सवाल उठाए।
मूल अमेरिकी अधिकार आंदोलन जैसे वुंडेड नी पर कब्जा।
ये सारे आंदोलन नीचे से उठे थे, आम लोगों की भागीदारी से।
जी, जिन इसी जमीनी काकत पर जोर देते हैं, वो दिखाते हैं कि कैसे सरकार ने इन आंदोलनों को दबाया भी, लेकिन साथ ही उनकी कुछ मांगों को मानकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश भी की, जिसे कोऑप्टेशन कहते हैं।
मतलब आंदोलन की धार को कुंद कर देना।
हाँ, और जिन बाद के दशकों में भी देखते हैं कि कैसे कॉरपोरेट हितों और सैन्यवादी नीतियों पर दोनों बड़ी पार्टियों, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, में एक तरह की सहमति बन जाती है। वो आतंक पर युद्ध की भी आलोचना करते हैं। किताब के अंत में वो गार्ड्स के विद्रोह की बात करते हैं। ये क्या है?
ये एक दिलचस्प विचार है। गार्ड से जिन का मतलब है समाज का वो मध्य वर्ग जो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, जैसे पुलिस, सैनिक, टीचर, व्हाइट कॉलर वर्कर्स।
अच्छा।
जिन सोचते हैं कि अगर ये गार्ड्स आर्थिक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगें, अगर उन्हें लगे कि व्यवस्था उनके साथ न्याय नहीं कर रही, तो क्या वो भविष्य में व्यवस्था के खिलाफ निचले वर्गों के साथ हाथ मिला सकते हैं? ये एक सवाल है जो वो उठाते हैं।
तो इस पूरी किताब से कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, अगर हमें संक्षिप्त में बताना हो?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे अहम संदेश है वर्ग संघर्ष। जिन दिखाते हैं कि अमेरिकी इतिहास की बुनियाद में अमीर और गरीब, शक्तिशाली और शक्तिहीन का टकराव रहा है। ये उस कहानी को चुनौती देता है जो कहती है कि हम सब एक हैं।
हाँ, ये राष्ट्रीय हित वाली बात पर सवाल उठाता है। दूसरा,
अमेरिकी अपवादवाद का मिथक तोड़ना। जिन साफ दिखाते हैं कि अमेरिका का इतिहास भी हिंसा, लालच, नस्लवाद और साम्राज्यवाद से भरा है, जैसे दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों का रहा है। कोई अनोखी नैतिक श्रेष्ठता नहीं है।
ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्र अपनी कहानियां कैसे बनाते हैं, है ना? और क्या छुपाते हैं?
बिल्कुल। तीसरा संदेश, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्मीद जगाता है, वो है आम लोगों की ताकत और प्रतिरोध का इतिहास। जिन बार बार दिखाते हैं कि बदलाव हमेशा नीचे से आया है, लोगों के संगठित होने और लड़ने से।
ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ ऊपर बैठे लोग नहीं बनाते। हमारे अपने देश में भी हम ये देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के आंदोलनों तक।
सही कहा। चौथा संदेश है सरकार की भूमिका के बारे में। जिनके मुताबिक सरकारें शायद ही कभी तटस्थ होती हैं, वो ज्यादातर शक्तिशाली और अमीर वर्गों के हितों की सेवा करती हैं। अगर सुधार होते भी हैं तो अक्सर जन दबाव के कारण, और वो भी व्यवस्था को बचाने के लिए।
ये हमें आज की नीतियों को भी ज्यादा ध्यान से देखने के लिए कहता है, किसका फायदा हो रहा है।
और पांचवा संदेश है इतिहास की चयनात्मक याददाश्त। जिन दिखाते हैं कि कैसे सत्ता को चुनौती देने वाली कहानियों, संघर्षों और आवाजों को अक्सर मुख्यधारा के इतिहास से गायब कर दिया जाता है। उनका काम उन भूली हुई यादों को वापस लाना है।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, बहुत शक्तिशाली।
हाँ बिल्कुल। जैसे जिन लिखते हैं, उत्पीड़ित लोगों की याददाश्त उनसे छीनी नहीं जा सकती, और ऐसी यादों वाले लोगों के लिए विद्रोह हमेशा सतह के ठीक नीचे उबलता रहता है।
वाह, ये दिखाता है कि इतिहास कैसे वर्तमान को प्रेरणा दे सकता है।
जी, या फिर ये कि निर्दोष लोगों की हत्या के शर्म को ढकने के लिए कोई भी झंडा काफी बड़ा नहीं है। देशभक्ति के नाम पर होने वाली हिंसा पर सीधी चोट।
और वो वाली बात भी बहुत असरदार है कि बदलाव के लिए बड़े हीरो वाले काम जरूरी नहीं है।
हाँ, जब लाखों लोग छोटे छोटे कार्य करते हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। यह आम लोगों की सामूहिक शक्ति पर जोर देता है। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा असर डाल सकती हैं।
और शायद सबसे ज्यादा उकसाने वाली बात जो जिन कहते हैं,
वो सविनय अवज्ञा और आज्ञाकारिता वाली। इस दुनिया में असली समस्या सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस नहीं है, बल्कि नागरिक आज्ञाकारिता, सिविल ओबीडियंस है।
हाँ, मतलब असल खतरा अन्याय के खिलाफ बोलना नहीं, बल्कि अन्याय को चुपचाप सहते जाना है। ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है।
बिल्कुल।
तो फिर इस किताब को पढ़ने का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हमें मीडिया और सरकार की बातों को ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से देखना सिखाती है। हम ये पूछना शुरू कर सकते हैं कि जो कहानी बताई जा रही है उससे किसका फायदा है, किसकी आवाज गायब है।
हाँ, मतलब खबरों के पीछे की खबर देखना।
बिल्कुल। दूसरी बात, ये हमें आज के सामाजिक आंदोलनों को एक बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में देखने में मदद करती है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का हो, या किसी और अधिकार की लड़ाई हो। ये समझना कि ये संघर्ष अचानक पैदा नहीं हुए, इनकी एक लंबी जड़ है, इससे हिम्मत मिलती है ना।
सही। और ये देशभक्ति के मायने भी बदल सकती है। क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ सरकार का समर्थन करना है?
या फिर देश के उन आदर्शों के प्रति वफादार होना है जो संविधान में लिखे हैं, और उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो सबसे कमजोर हैं। जिनके हिसाब से तो कई बार सरकार से असहमत होना ही सबसे देशभक्ति का काम हो सकता है।
और अंत में शायद ये किताब हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी थोड़ा सशक्त महसूस करा सकती है।
हाँ, क्योंकि ये याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़े लोग नहीं बनाते, हम सब उसका हिस्सा हैं। हमारे छोटे छोटे एक्शन, हमारी आवाज, हमारा विरोध, ये सब मायने रखता है। हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं है।
मेरे लिए इस किताब से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो यही है कि इतिहास कभी न्यूट्रल नहीं होता। कोई भी इतिहासकार अपना एक नज़रिया लेकर लिखता है, और यान का नज़रिया उन लोगों का है जिनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। और ये जानना कि प्रतिरोध हमेशा से होता आया है, ये बहुत आँखें खोलने वाला था।
और मेरे लिए ये किताब एक ज़रूरी याद दिलाने वाली चीज़ है कि लोकतंत्र, समानता, न्याय, ये सब हमें तोहफे में नहीं मिलते, इनके लिए लगातार लड़ना पड़ता है। और उस लड़ाई के इतिहास को जानना, उन अनगिनत लोगों के बारे में पढ़ना जिन्होंने जोखिम उठाए, वो आज बहुत प्रेरणा देता है। ये किताब इतिहास को एक बंद किताब नहीं बल्कि एक चलती हुई बहस बनाती है कि हम कौन हैं और हमें कैसा समाज चाहिए।
तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस किताब की बातों को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, हमारे अपने समाज के ऐसे कौन से अनकहे या दबाए गए इतिहास हैं जिन्हें अगर हम जाने तो शायद आज को समझने का हमारा नजरिया बदल जाए और शायद भविष्य की दिशा भी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।